क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। बूंद बूंद मिलके बने लहर, और लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे की ओ मन की गार। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नया मन का उजाला। तूने ही हमें सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। वो सर्वधर्म समन्वय समन्वय समन्वय। बूंद बूंद मिलके बने लहर, और लहर लहर मिलके बने सागर। सबके लिए प्रेम का घर तुमने बनाया, लाई तुम ही सबके लिए शांति भरा मन। खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। वो सर्वधर्म समन्वय समन्वय समन्वय। बूंद बूंद मिलके बने लहर, और लहर लहर मिलके बने सागर। धूप जहां हमको लगे छाव करे तू, तेरे कदम जहां पड़े शीश झुकाए। प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए। वो सर्व धर्म समन्वय समन्वय समन्वय। बूंद बूंद मिलके बने लहर, और लहर लहर मिलके बने सागर। बहुत समय पहले ये गीत हम बचपन में गाया करते थे, क्रिश्चियन गीत है, जिसमें ईसा मसीह की महिमा हो रही है कि तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, क्रांति का यह पर्व आया, का संदेश क्रांति संदेश प्रेम सिखाने आया है, क्रांति का यह पर्व सिखाने आया है कि देना ही है।
का जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्व धर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो 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 हो। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर।
तो यज्ञ इतिहास ने आप दी है, और वो क्रांति केवल तब नहीं घटी, वो क्रांति अब घट रही है। और ये तो वो घटना जो कर रहे, एक एक प्रसंग, एक एक घटना जो घटी उसकी पुनरावृत्ति होगी, रेपिटेशन होगा, अलग ढंग से, अलग रीति से, कुछ किससे चर्चा कर, और केवल चर्चा नहीं, मैं देख रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे। जीवन अर्थात सीखना और आगे बढ़ना, जीवन अर्थात रुकना नहीं, जीवन अर्थात पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखकर दुखी और पश्चाताप नहीं करना। जो हो गया वो हो गया, सीखो और आगे बढ़ो, सीख लो और आगे बढ़ो। एक बार लखनऊ से एक क्रिश्चियन भाई मधुबन में बाबा से मिलने आया, उसको सब लोग डन साहब कहते थे, और वो जीसस क्राइस्ट का अनन्य भगत था, अगाध श्रद्धा थी क्राइस्ट में। और वो पहली बार लखनऊ से ब्रिज उठी बाबा से मिलने आया, और जैसे ही उसने बाबा को देखा उसे क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा नहीं दिखाई दिया, कौन दिखाई दिया? जीसस क्राइस्ट दिखाई दिया। और वो एकदम चिल्लाया और गले लग गया, चिपक गया, और कहने लगा, ओ लॉर्ड थाउ हैथ कम, आई एम ब्लेस्ड। हे प्रभु तुम आ गए, मैं धन्य हुआ, और रोने लगा। जितना दिन तक वो यहाँ था, और उसने कहा कि जब जब मैं बाबा को देखता हूँ हर बार मुझे क्राइस्ट का साक्षात्कार होता है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जो भावना होगी उसको वो दिखाई देगा, परंतु कब, परंतु कब? एक तो उसकी अपनी सच्ची भावना, पर जिसमें दिखाई दे रहा है उसमें भी कब दिखाई देगा? जिसमें दिखाई दे रहा है उसमें ऐसी क्या चीज होगी जब ये दिखाई देगा? वो बहुत ऊंची स्थिति में जब कोई स्थित है, और परमात्मा याद में कोई स्थित है, और अशरीरी अवस्था में स्थित है, तब अपने आप आत्माओं को उस आत्मा में वो दिखाई देगा जिनकी वो उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। जरूरी नहीं है हम में इसमें भगवान दिखे या भगवान का साक्षात्कार हो जाए, जिसकी जिसमें भावना है वो भावना हमारे द्वारा परमात्मा पूरी करेगा, परंतु किसके द्वारा? जो योग्य है उसके द्वारा, जिन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया, शरीर, देह, देह की दुनिया, शरीर के विकार और शरीर के आकर्षण ये सबसे ऊपर, अशरीरीपन बाबा के कमरे में बैठकर अनुभव करने की वस्तु चीज साधना नहीं। अशरीरीपन निरंतर हो, और अशरीरीपन ऐसा भी ना हो कि हम केवल रटते रहे कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं। जब भूल गया तब शरीर बन जाएंगे, मेल हूँ मेल हूँ, फीमेल हूँ फीमेल हूँ। कोई बोलता है ऐसा? मैं पुरुष हूँ स्त्री नहीं, कोई बोलता है ऐसा? ऐसी कोई साधना करता है कि मैं भूल ना जाऊँ, अरे मैं तो पुरुष हूँ स्त्री नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि इतना गहरा अभ्यास हो गया है, चेतना का स्वरूप हो गया है वो, इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, इसमें कभी भूल नहीं होती है। जो हमेशा हम कहते हैं कि 20 साल पहले मधुबन के आंगन में किसी ने एक पर्स दे दी, गिफ्ट दे दी, कोई हमसे पूछा जाए कब दिया था, डेट याद नहीं, कब दिया था समय याद नहीं, कहाँ दिया था, किचन में दिया था कि आंगन में दिया था, वो भी याद नहीं आ रहा है, देने वाले का नाम वो तो बिल्कुल याद नहीं। वो देने वाला कहाँ से था? कुछ याद नहीं। देने वाले का चेहरा वो भी भूल गया, देने वाले की आवाज वो भी भूल गया, परंतु वो स्त्री थी या पुरुष थी ये नहीं भूला है। ये पक्का है कि देने वाला पुरुष था और देने वाली स्त्री थी, ये नहीं भूलता है। तो ये जो भाव है ये कितना गहरा है, कितना पक्का हो गया है। उसी तरह आत्मिक भाव पक्का हो जाए और वो केवल रटने से नहीं होगा, फिर किससे होगा? वो प्रैक्टिस से भी नहीं होगा, वो किससे होगा? उसमें क्या डाला जा रहा है? उससे जितना हेवी उसमें डालोगे वो नीचे जोड़ के रखेगा धरती से, जितना कम उसमें डालोगे उतना वो ऊपर उठेगा। और ये भाव सहज सहज बनता जाएगा, परिणाम होगा शरीरीपन, आत्माभिमानी स्थिति, क्योंकि आक्रमण जड़ों में किया है। योगी का शरीर लाइट का शरीर होता है, डाइजेशन का शरीर नहीं। तो ये भाई आया, बाबा को देखा और क्या हुआ? क्राइस्ट थाउ हैस्ट कम, ओ लॉर्ड थाउ हैस्ट कम, ओ लॉर्ड, लॉर्ड बोलने लगा, हे प्रभु आप आ गए, मैं धन्य हुआ, मुझे पता ही नहीं था। उसकी भावना क्राइस्ट में थी, उसकी श्रद्धा क्राइस्ट में थी, इसलिए उसे क्राइस्ट दिखा। कोई हनुमान का भगत आ गया होता तो हनुमान दिखते, और राम जी का भगत आ गया होता तो राम, सिया राम मई सब जग जानी, उसको तो सब जगह राम ही राम दिखते हैं पहले से। परंतु फिर फर्क क्या है? एक अत्यंत विकारी पुरुष और एक अत्यंत निर्विकारी पुरुष। निर्विकारिता जितनी बढ़ती है उतना परमात्मा हमारे अंदर झलकने लगता है, दिखने लगता है, और जितना व्यक्ति विकारी होता है उतना वो काला काला होता है, उसमें वो परछाई, वो इमेज नहीं दिख पाती, मिरर। निर्विकारिता अर्थात दर्पण बन जाना जिसमें परमात्मा दिखाई दे। एक ही व्यक्ति में किसी को क्राइस्ट दिखेगा और किसी में किसी को राम, और किसी को हनुमान और किसी को गणेश, जो जिसकी भावना जिसमें है उसको वो दिखेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले तो भावना, अपनी भावनाओं को भी बहुत श्रेष्ठ करना है। अगर पहले से ही कुटिल भावनाएं हैं, निगेटिव भावनाएं, तो इस ब्राह्मण परिवार में भी सभी कैसे दिखेंगे? कुटिल, षड्यंत्रकारी। षड्यंत्र हम तब देखते हैं जब भीतर षड्यंत्र चल रहा होता है, छलकपट 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 छलकपट, जब भीतर चित्त निरागस हो जाए तो फिर सारी दुनिया भी कैसी दिखती है? वैसी। सतो गुनी बुद्धि, अर्थात जो बुद्धि निगेटिविटी देखे ही ना, निगेटिविटी है पर उसे दिखाई नहीं देती, है पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, है परंतु पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा मॉरल, अपनी स्थिति को ऊंचा उठा देना है। वो लाइन के साथ कुछ नहीं करना है, दूसरी लाइन को बड़ा बना दो, ये लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना है हमें अपने साथ करना है, ना उसे गिराना है, ना उसे नीचा दिखाना है, ना उसके सामने कुछ सिद्ध करना है, ना अपने आप को जस्टिफाई करना है। सुनो, तुम जो मेरे बारे में सोचते, मैं वैसा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, तुमने गलत समझा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, डू यू हैव टाइम अपॉइंटमेंट, ताकि मैं तुम्हारे सामने बताऊं कि मैं जो हूं और तुमने जो समझा है वैसा नहीं हूं, मेरी कितनी शुद्ध भावना है और कितनी निस्वार्थ सेवा है। तुम समझ रहे हो ना, मैं इतना अहंकारी हूं, मैं इतना अहंकारी हूं नहीं, तुम्हें लग रहा है, पर मैं हूं बहुत निरहंकारी। स्वयं को उठा दो, किसी और के साथ कुछ करना नहीं। बाबा थोड़ी ना एंटी ओम मंडली के पास गए और एक एक को बैठ के समझाया कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, समझाया किसी को? किसी को कुछ नहीं समझाया, किसी से कुछ नहीं बोला ना कहा। रोज अखबारों में हजारों चीजें लिख के आ रही है, सारा समाज विरोधी है, जाके उनको सफाई दी गई? कोई सफाई नहीं। और यदि कोई व्यक्ति हमें वास्तव में जानता है तो उसके सामने कभी भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। अगर उसे सफाई हमें सफाई देने की जरूरत पड़ रही है तो वो हमें शायद कभी जानेगा भी नहीं। जो सच्चे प्यार करने वाले हैं उनके सामने सफाई हमको नहीं देनी पड़ती है, वो हमसे ज्यादा हमको जानते हैं। और अगर हम में किसी को साक्षात्कार हो रहा है तो क्या करेंगे? इसमें बहुत बड़ी माया है। कोई आकर आपको कह दे कि आप वहां बैठे थे ना, हमको ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, आप क्या बोलेंगे? और क्या क्या दिखा? मम्मा दिखी क्या? और फिर उसके सामने हम धीरे धीरे चलेंगे ब्रह्मा जैसे, जब तक वो, जब भी वो दिखे हमको, वो हमको देख रहा हो कॉन्शियस, उसके सामने हम डांट नहीं सकते अब किसी को, क्योंकि इज्जत का सवाल है, क्योंकि उसने बोल ही दिया ऐसा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें अहंकार के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये भी नहीं समझो कि उसने बोला मतलब ऐसा है, ये उसके मन का भ्रम है या उसके मन की कोई साइकेट्रिक इलनेस है, प्रॉब्लम है उसका, या उसका अपना कोई स्वार्थ है, राइट? अचानक उसको कहां से हम में ब्रह्मा दिखने लगा? अब तक तो नहीं दिखा था। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हमारी आवाज तो बचपन से ही ऐसी है, आज ही कैसे अच्छी हो गई? आपकी हंसी बहुत अच्छी है, आज से ऐसे कैसे अच्छी हो गई? हंसी तो बचपन से है। नहीं, हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वो भी क्लास में। जरूर कुछ तो स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सबका ये स्वभाव है, बिना स्वार्थ के कोई आके आपकी तारीफ नहीं करता। हाँ, कोई कोई हो भी सकता है, उसे दिखे भी, अगर कोई रियल भाव से तारीफ करता है, उसको वास्तव में दिखा कि ये ब्रह्मा है, अब क्या करोगे बताओ? नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे? उसके रियल है, रियल है, अब क्या करेंगे? उसको वास्तव में ऐसा अनुभव हुआ, अब वो उसकी भावना है एक, और हमें इतना ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम भी साधक ही है। वो तो उसका चित्त इतना शुद्ध हो गया है कि जिसकी जिसमें भावना होती वो सब दिखता है, उसको वही दिखता है, तो उसकी स्थिति हमसे ऊंची है एक्चुअली। हम छोटी स्थिति में है कि हम जैसे छोटी स्थिति के व्यक्ति में भी उसको ऊंचाई दिखाई दे रही है। ये महानता हमारी नहीं, उसकी है, और इसमें अहंकार के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जिसका, जो जिसका भगत रहा है लंबा समय, और वो व्यक्ति जब ज्ञान में आ जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें वो दिखता है उसको। ये ऐसा, इसमें कुछ भी महानता, इसमें हमारी कोई महानता ही नहीं है। हम एक जगह गए थे तो भट्टी चालू थी, तो एक बहुत बुजुर्ग माता, बहुत बुजुर्ग, वो आई और कहने लगी, आप जब वहां बैठे थे ना, तो हमको लगा साक्षात संत ज्ञानेश्वर बैठे थे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, वो उसी की भक्त होगी। तो जो जिसका भगत होता है, या ज्ञान में आने से पहले जिस पर जिसकी भावना होती है, उसको बाद में यहाँ पर कईयों में वो दिखाई देता है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। स्टोरी नंबर टू, वही कहा कि जिसमें प्यूरिटी की पावर होगी और जिसमें वो पवित्रता होगी और वो बढ़ती जाएगी, वो भगवान का दर्पण बनेगा धीरे धीरे। परंतु ये यात्रा है, इसमें रुकना नहीं है, नहीं तो सिद्धियां और तारीफ और स्तुतियां और एक्नॉलेजमेंट बाधा है। ये अगर व्यक्ति स्वीकार कर ले तो यहीं रुक जाएगा बस, फिर वो गिरना चालू हो जाएगा, यहाँ से गिरावट चालू। क्योंकि अहंकार ही तो सबसे बड़ा योगी का शत्रु है। मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध लोभ मोह 99 में पहुंचा है। यहाँ पे एक सांप है, सांप और सीधा नीचे, आध्यात्मिक स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी का खेल है ये। बस अभी संपूर्ण बनने ही वाला है। जॉन बनियान नाम का एक लेखक है, उसने किताब लिखी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसमें लिखा है कि स्वर्ग का जो द्वार है, स्वर्ग का द्वार, एक राही यात्रा कर करके बस अभी स्वर्ग में प्रवेश ही होने वाला है। स्वर्ग का बड़ा द्वार खुला है, एक छोटी सी पगडंडी है बाजू में स्वर्ग के द्वार में। वो सोचता है ये क्या है, बस उसी पगडंडी में से गुजरता है और नरक में वापस पहुंच जाता है। एक छोटी सी पगडंडी उसे कहां पहुंचा देती है? वापस नरक में। क्यूरियोसिटी क्या है या अहंकार? स्टोरी नंबर टू, डॉक्टर बलवंत नीचे थे, अभी तो दिल्ली है शायद, बहुत पुराने भाई बाबा के समय के, तो उनका बीच में एक बार एडमिट भी थे हॉस्पिटल में, काफी दिन रहे थे, तो उनका शरीर भी हट्टा कट्टा और लंबे, बाबा जैसे थे बस सेम वैसे। बाबा के ड्रेस उनको आ जाते थे, वो कहते थे मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। उनको भी अपना नशा था। तो वो एक बार इधर हवाई महल है मधुबन में जो, और वहाँ पर चढ़ के जा रहे थे, एकदम कूद कूद के, एकदम छलांग लगा लगा के जा रहे थे सीढ़ियों पर, और बाबा की नज़र गई भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बाबा की नजर गई। फिर शाम के समय जो चैम्बर में बैठते थे उसमें बाबा ने कहा, रोजी बहन थे मद्रास चेन्नई के, उसके पिताजी को कहा कि फरिश्ते सतयुग में राजकुमार कैसे चलते, जरा चल के दिखाना। तो उन्होंने चल के दिखाया सतयुग के राजकुमार कैसे चलते हैं। और फिर बलवंत भाई की तरफ देखा और कहा, बंदर कैसे चलते जरा चल के दिखाना बंदर की चाल कैसे होती है तो उन्होंने समझ लिया कि शायद जो मैं उछल कूद करके भाग रहा था ऊपर सीढ़ियों पर, बाबा ने मुझे देख लिया। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी चाल देवी चाल रहेगी। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंजेलिक वॉक, चलना कैसा है, धीरे धीरे, फरिश्ते की तरह, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में इस सृष्टि की तरफ ध्यान डालो। कौन जल्दबाजी कर रहा है, वो बादल कैसा चल रहा है, धीरे धीरे धीरे, सूरज धीरे धीरे, चंद्रमा धीरे धीरे, सब प्राणी, सब पशु, सब पक्षी धीरे धीरे चल रहे, आराम से, सहजता से चल रहे। एक ही प्राणी है केवल जो भाग रहा है इंसान, मनुष्य भागे जा रहा है, उसे कहीं पहुंचना है, कहां पहुंचना है उसको पता नहीं, क्यों भाग रहा है, क्योंकि बाकी भी भाग रहे हैं, बस यही कारण है उसकी दौड़ का। मुंबई के दादर स्टेशन पर जाकर खड़े हो जाओ, लोग कैसे भाग रहे देखो, उसको पूछो कहां जा रहे हो, टाइम ही नहीं है बताने के। और क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि सब भाग रहे हैं, अनहरीड पेस, भागना नहीं, क्या करना है, चलना है, चलना, उठना, खाना खाना, जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, हरी वरी करी, हरी वरी और करी, यही सभी बीमारियों का कारण है। हरी अर्थात जल्दबाजी, अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी, हे प्रभु मुझे धैर्य दे पर जल्दी दे, गिव मी पेशेंस बट फास्ट, समय का है, आई एम लेट। जल्दबाजी जो है ना उसमें गलतियां होती है। तो क्या सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं, और चलना कैसा है, धीरे धीरे, भाग भाग के नहीं, फरिश्ता चल, सारी चीजें फरिश्तों जैसे, खाना धीरे धीरे, कॉन्शियस ईटिंग, धीरे फटाफट नहीं खा लो, पीना कॉन्शियस ड्रिंकिंग, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस वॉकिंग, माइंडफुल वॉकिंग, चल रहे हो एक एक कदम के ऊपर ध्यान, कॉन्शियस टॉकिंग, सब कुछ होश में करना, सब कुछ होश में, और धीरे धीरे, ये अध्यात्म है। अध्यात्म अर्थात ये नहीं कि बाबा के कमरे में 8 घंटा बैठ के कोई योग कर रहा है, योग तो बाबा के कमरे के बाहर चालू होता है, कमरे में नहीं, योग कहां से चालू होता है, कमरे से बाहर, चलता फिरता योगी, रमता योगी। और क्या सीखेंगे इससे, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद बाबा बंदरों वाली चाल नहीं। बंदर क्या करता है, उछल कूद उछल कूद उछल कूद, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, और प्राप्ति क्या होती है उसको, कुछ नहीं। स्टोरी नंबर 3, भोली दादी बाबा के पास पहुंची और बाबा से कहने लगी, बाबा गेहूं की बोरियां आई है और गेहूं को साफ करने वाला कोई भाई नहीं मिल रहा है, गेहूं को साफ करने वाला। इसके पहले हम एक स्टोरी देखे थे ट्रक से उतारने वाली, परंतु ये स्टोरी है गेहूं को साफ। बाबा ने कहा, जाओ जल्दी जल्दी थालियां लेके आओ और बोरियां खोलो, बाबा आज खुद ही साफ करने बैठेंगे। और गए और गेहूं साफ करने बैठ गए। धीरे धीरे किसी ने देखा, फिर वो आया, फिर और किसी ने देखा, वो आया, और आते 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 सारे आ गए और आधे घंटे में सारी सफाई पूरी हो गई। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, खुद ही चालू कर दो, दूसरे करे फिर मैं करूं नहीं, जो ओटे सो अर्जुन अर्थात इनिशिएटिव मुझे कर लेना है, चालू कर दो कारवा जुड़ जाएगा। पवित्रता के मार्ग में पहले मैं ब्रह्मचारी बनूं, बाकी घर वाले पति पत्नी बने ना बने उनके लिए रुकना नहीं है, किसी के लिए रुकना नहीं है पवित्रता के मार्ग में, आगे बढ़ चलो, अपने आप पीछे सब आ जाएंगे। और क्या सीखेंगे इससे, लीडरशिप क्वालिटी है ये। लीडर जो होता है वो कैसा होता है, शुरुआत खुद करता है, हम्बल होता है। लीडर ये नहीं कहता कि वो बॉस कहता है, लीडर और बॉस में अंतर है। बॉस कहता है चलो लग जाओ तुम लोग, लीडर कहता है कि मैं पहले पहले मैं करूंगा, ऑर्डर नहीं देता है, और बॉस ऑर्डर देता है, लीडर कमांड्स रिस्पेक्ट्स। और क्या सीखेंगे, छोटा से छोटा भी काम हो, कोई भी हो, उसको क्या ये नहीं समझना ये मैं क्यों करूं, करके सिखाना, ये एक सेपरेट है। पर ये भी है कि कोई भी यज्ञ की सेवा हो, चाहे बाथरूम साफ करने की सेवा मिल जाए या लाखों के सामने भाषण देने की सेवा, एक ही है, भाव क्या है उसके पीछे। यदि अहंकार आ जा रहा है तो फिर क्या कहेंगे उसको। और बाबा सिखाते भी कैसे थे सबको, करके सिखाते थे। और किससे गलती भी होती थी तो उसको कहते थे कि तुम तो सोना हो, तुम क्या हो, सोना, पर ये अपनी गलती सुधार लो तो सोने पे सुहागा होगा। ये गलती इतनी सुधार लो बस, तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा। तो कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है, कोई भी कार्य छोटा कार्य नहीं है, यज्ञ की सेवा है वो, कुछ भी हो, कुछ भी, साफ सफाई की सेवा, कुछ भी, छोटी सी छोटी सेवा। और हर एक काम को सेवा समझ के करना है। केवल ड्यूटी समझ के करेंगे तो मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैं तो चला, मैं तो चली, बाय। माँ कहती है क्या, बेटा बीमार है, सुबह से लगी हुई, 5 बज गए, मेरी ड्यूटी पूरी हुई, बच्चे बाय, उसको बुखार है 104, माँ कहती है मेरी ड्यूटी पूरी हो, मैं क्यों करूं, क्यों क्यों, क्योंकि प्यार है, प्यार समय को नहीं देखता, प्रेम अशरीरी है, शरीर से उसे कोई लेना देना नहीं, शरीर की थकान, शरीर की इच्छाएं, वासनाएं, आकर्षण, शरीर के भोग, ये सब जहां है वहां प्रेम है ही नहीं, वहां वासना है। लव इज बॉडीलेस, लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। संसार में जो प्रेम है वो शरीर के इर्द गिर्द घूमता है, वो प्रेम ही नहीं है, वो तो वासना है, नाम प्रेम का देते है वासना। संज्ञा, संज्ञा ही गलत है, व्याकरण बदलने की आवश्यकता है। तो प्रेम तो अघात, बड़ा विशाल है, विस्तीर्ण है, बेहद है, बाउंडलेस। स्टोरी नंबर 4, हिस्ट्री हॉल में अभी 2 संतलियां रखी है, पहले 3 रखी रहती थी, एक मम्मा के लिए, एक बाबा के लिए और तीसरी बच्चों के लिए। तो जो भी आता था उसको वहां बिठाते थे। एक बार बाबा आए और बहुत खुशी में थे और बहुत रमणीक मूड में थे, और जो बच्चों वाली संतली है वहां बजा बजा के बैठे। तो सब लोग देखने लगे ये क्या है। तो बाबा ने कहा आज बाप बाप बनकर नहीं बच्चा बनकर आया है। और बाबा वहां बैठ गए और उसके बाद कहने लगे जिसने 2 साल से झूठ नहीं बोला वो आएगा सामने और वो टोली बांटेगा। जिसने 2 साल से झूठ नहीं बोला वो आके टोली बांटेगा। कौन आया पता नहीं। हिम्मत भी चाहिए इसके लिए, झूठ यहां चल ना सके, ये सच का दरबार है, कितना भी छुपाओ झूठ यहां चल ना सके। इसलिए बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, जो सच्चे है, जो साफ है। माना बहुत पाप हुए, विकर्म हुए, ब्राह्मण बनने के बाद भी हुए, परंतु यदि सच्चाई से सुना दो तो आधे हो सकते हैं, कम हो सकते, बोझ कम हो सकता है, या फिर नहीं भी हुआ तो आगे वो न करने की हिम्मत और शक्ति आ सकती। छुपाएंगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हमको याद है हम गांव में जाते थे सेवाओं के लिए हॉस्पिटल की गाड़ी से, तो एक गांव में जाते थे, एक पेशेंट दूर बैठा रहता था और अपना वो ऐसा छुपा के रखता था चेहरा, हम रोज देखते थे ये हमेशा बैठा रहता है एक पत्थर पर और उसका चेहरा एक तरफ का वो छिपा के रखता है, पर वो पेशेंट नहीं था, मतलब हमारे पास नहीं आता तो हम क्यों जाए उसके पास। तो हम देखते थे देखते थे देखते थे और वो हमेशा ऐसा, हम आते थे तो और ज़्यादा छुपाता था, हमको लगा ये क्या है। तो एक बार जस्ट हमारी गाड़ी गई और पेशेंट्स कम थे तो हम सोचे चलो देखते हैं इसको क्या है ये। तो जैसे हम गए और भागने लगा वो। हमने कहा रुको क्या है निकालो, उसने खोला, वो इतना बड़ा ट्यूमर था, फंगस पूरा लगा हुआ था, फंगेटिंग मास, यहां से ट्यूमर चालू हो गया था, यहां तक लटक रहा था। आई वाज शॉक्ड, ये क्या है, और उसमें से पस, और वो ऐसे छुपा के रखता था रोज। हमने कहा इसको तो लेके चलना है। ये बहुत पुरानी बात है 2004 की, और उसने छुपा छुपा के इतना बड़ा हो गया था, तो उसको हम फिर यहां लेके आए। ग्लोबल में, और उसी समय डॉक्टर अशोक मेहता सर यहाँ थे और सर को दिखाया। उन्होंने कहा ये तो इमीडिएट ऑपरेशन करना है इसका, तो उसको ओटी में लिया फिर कुछ दिनों के बाद, और उसका बहुत बड़ा सर्जरी हुआ, कमांडो सर्जरी, मैंड की पूरा रिसेक्शन पूरा निकाला, यहाँ की चमड़ी निकाल कर यहाँ लगाया वगैरह वगैरह। काफ़ी दिन हॉस्पिटल में था और फिर हम उसको गाड़ी में बिठा के लेके गए थे वापस, तो बड़ा सत्कार भी हुआ था फिर लोग पहचान नहीं पाए उसको, क्योंकि इतनी बड़ी ऑपरेशन के बाद चेहरा चेंज हो जाता है, मुंह से फिर खा नहीं सकते, नाक में नली होती है उससे जीवन भर उससे खिलाओ या तो पेट में नली, तो छिपाया इसलिए घाव क्या हो जाता है नासूर, मुरली में आता है ना, सर्जन है, सर्जन से नहीं छुपाओ, जो है बता दो। अरे तुमसे बड़े बड़े रोगी यहाँ बैठे हैं, पापियों की कमी नहीं है बाबा के दरबार में बड़े बड़े हैं इधर, हम सोचते हैं मेरा पाप बहुत बड़ा है, मेरा पाप बहुत, कैसे बताऊं कैसे सुनाऊं, बाबा को क्या लगेगा, मेरा इंप्रेशन क्या होगा, बाबा क्या सोचेंगे, इतना मेरा ज्ञानी बच्चा और ऐसा करता है। एक जैन मुनि प्रवचन में कह रहे थे कि मेरे पास एक दूसरे मुनि आए और कहने लगे बात करनी है, हमने कहा क्या बात करनी है बोलो, दिगंबर मुनि है कुछ नहीं पहनते, तो दूसरे मुनि उनके पास आए, उन्होंने कहा क्या बात करनी है, बोला अकेले में बात करनी, कौन कह रहा है, दूसरे मुनि, क्या बात करनी है अकेले में, चलो अकेले में बैठो बताओ, तो ब्रह्मचर्य का क्या करें वही तो नहीं होता कौन पूछ रहा है, एक मुनि दूसरे मुनि से, गृहस्थी नहीं, तो मार्ग लंबा है कठिन है परंतु सच्चाई हो। नेक्स्ट स्टोरी नंबर
फाइव।
एक बहन थी या है अभी पता नहीं, राजकुमारी बहन, उनके युगल थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया बनारसी भाई करके, तो वो बहन सुनाती 68 में पहली बार बाबा से मिलने आई और बहुत शर्मिली थी, और फिर बाबा ने कहा, मनमोहिनी दीदी साथ में थी, बाबा ने अपने कमरे में लेके गए और वहाँ पर आम की गुठली दी और कहा कि बच्ची खाओ, बहुत थोड़ा सा ये लगा कैसे खाऊं बाबा के सामने, और फिर खाई, और अभी जो बाबा का कमरा है वो पहले छोटा था आधा, और वहीं पर बाजू में एक वॉशरूम था और वहाँ एक बेसिन थी, तो आम खाने के बाद में वो बहन जी कहते कि मैं हाथ धोने के लिए बेसिन की तरफ बढ़ी और हाथ धोई, और हाथ धोते धोते मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास रुमाल है ही नहीं, मेरे पास हाथ में पोछू कैसे, रुमाल ही नहीं लाया, और वहाँ कुछ दिख नहीं रहा, खाली बेसिन है और वो आम के हाथ वो सब धो रही है, मुंह धोया हाथ धोया, तो रुमाल तो कुछ लाया ही नहीं है, तो वो सोच ही रही थी और जैसे पीछे मुड़ी बाबा टॉवेल लेके खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बच्ची टॉवेल तो वो बहन कहती है बाबा को कैसे पता चला कि मेरे पास रुमाल नहीं है। स्टोरी क्लोज। आत्माओं की इच्छाओं को और आत्माओं को हम परखने लगते हैं जैसे जैसे स्थिति ऊपर 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 उठने लगती है, बाप समान जैसे बन जाते हैं, जिसको जो चाहिए वो हम देते, जोजे वांछी लतोते लाओ, किसको क्या चाहिए मनोवांछित फल देना, आत्मा में वो क्या आ जाती है, परख शक्ति आ जाती है, और दूसरा ये प्रेम का भी स्वरूप है, नहीं तो कौन ऐसा करेगा, ये दासियों का काम है या और किसी और का काम है, हम क्यों करें, हम तो बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, वो भाव था ही नहीं इधर, वो जो मैं था बाबा का वो हटा दिया था, जैसे खत्म हो गया था, ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है, सारे प्रयत्न करने के बाद में भी ये अवस्था नहीं आती है आत्माओं को, महान आत्मा योगी तपस्वी संत बुद्ध तीर्थंकर सबके जीवन में देखो निरंकारिता तो है पर फिर परंतु फिर भी कभी कभी अहंकार आ ही जाता है, मैं ही तो गिराता है, मैं की मटकी फूटी और दिल मक्खन मक्खन हुआ मैं की तो मटकी फूटती नहीं है कैसे पहुंचे, इतने लोग हैं उनके ऊपर से चढ़ चढ़ के पहुंचना है और फिर उसको तोड़ना, तब दिल मक्खन होगा। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, उसको सूली पर लटकाया गया और अचानक एक विचार आता है, हे प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया, ओ लॉर्ड हैव दाउ मुझे छोड़ दिया तुमने, और फिर तुरंत कहता है कि अरे ये मैंने क्या सोचा, एक क्षण की विस्मृति पर तुरंत स्मृति आती है, थाउ शाल विल शाल बी डन, तेरी इच्छा जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, ये कहना कि हे प्रभु तू ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ये अहंकार है, तुम मेरे साथ, मतलब मैं अभी भी है। संडे की मुरली, मन बुद्धि बाप को के प्रति आकर्षित है तो किसी और के लिए प्रभावित कैसे हो सकती है? अमानत में ख्यानत है, ये मैं कहां से आ जाता है? सारा निकल जाता है, ये मैं ही नहीं छूटता, बस उसी को गिरा दिया। इसीलिए ब्रह्मा इस सृष्टि की, सृष्टि का आदि पिता है, उसने जो किया किसी ने नहीं किया। और ब्रह्मा ब्रह्मा इसलिए नहीं है कि उसके तन में भगवान है, वो ब्रह्मा तब बना जब उसके तन में भगवान नहीं और उसने जो कर्तव्य किए, इसलिए वो ब्रह्मा। स्टोरी नंबर 6। एक बहुत पुराने भाई थे, पता नहीं हमने तो नहीं देखा है, शायद जगन्नाथ भाई और पुराने भाइयों ने उनको देखा होगा। देवशरण भाई देखा है, जगन्नाथ भाई ने देखा है, आपने भी देखा है। तो बहुत बुजुर्ग भाई थे, पहले मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री से उनको रिटायर कर दिया गया, क्योंकि मिलिट्री में जब थे उनका एक फेफड़ा का ऑपरेशन हुआ, एक फेफड़ा निकाल दिया और मिलिट्री वालों ने कहा ये 70% अयोग्य है मिलिट्री के लिए, इसके लिए सेनानिवृत्त कर दिया उनको, देवशरण भाई को। और वो जब 60 वर्ष के थे, 77 में, तब मधुबन में आ गए सेवाओं की। तो अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई थी और अव्यक्त बाप दादा ने उनको कहा, उस सरकार ने आपको कहा है कि आप 70% अयोग्य हो, बाप कहते हैं आप 100% योग्य हो। बाप क्या कहते हैं? 100% योग्य हो, देवशरण भाई। और फिर अभी इनकी उम्र ही 60 साल थी और 60 साल में तो मधुबन आए, तो इनको क्या सेवा थी? तो इनको फिर एक पुराना ट्रक था, वो सेवा दे दी गई कि यहाँ से आबू रोड जाओ और क्या करो, आबू रोड से सामान, सब्जियाँ, पार्सल और कुछ देना हो या मकान का जो काम है उसमें जो चीज़ें लगती है वो आने जाने का काम इनको दे दिया गया। तो ये ट्रक से वो सेवा करते रहे। और एक बार की बात है, जब ये सुबह 4 बजे निकल जाते थे ट्रक लेकर आबू रोड, तो एक बार अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, मतलब आए तो शाम को ही होंगे, सुबह हो गई होगी। तो बाबा ने उनको बुलाया और कहा कहाँ जा रहे हो? तो देवशरण भाई ने कहा, दादा, देवशरण दादा, उन्होंने कहा नीचे जा रहा हूँ। तो बाबा ने उनसे बातें की, पूछताछ की, और फिर बाबा के पास जितनी टोलियाँ पड़ी थी सारी उठा के उसको दे दी और कहा कि अभी खाओ, और अभी खाई और कहा ये बाद में खाना। तो इतना बुजुर्ग भाई और जितने इतनी सेवा की, अगर कहीं दूसरी जगह जाता तो उसको कहते थे तुम तो रिटायर हो, घर जाओ, और बाबा ने आराम करो घर। 60 साल की उम्र में सेवाएं चालू और इतनी अथक सेवाएं की। कब शरीर छोड़ा मुझे साल पता नहीं, कई साल हो गए, 10-15 साल। जगन्नाथ भाई, चिमन भाई को पता होगा, देवशरण भाई दादा 10-12 साल ज़्यादा ही हो गया होगा, 95 के आसपास तक जिए वो। बाबा ने कल कहा था ना मुरली में, लंबा जीने के लिए क्या कहा था कल? सेवा करो तो आयु बढ़ेगी। तो सेवा करते रहो, दीर्घायु चिरंजीवी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहला तो ये समझना ही नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये संकल्प ही बूढ़ा कर देता है कि मैं बूढ़ी हूँ, मुझे ज़्यादा काम मत बताओ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं चल नहीं सकती, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। जानकी दादी को कभी सुनते कहते हुए सुना, मैं बूढ़ी हूँ, हर दिन ये सोचो मैं जवान और जवान, पीछे पीछे जा रहा हूँ, आगे आगे नहीं, पीछे पीछे उम्र में, और क्या समझेंगे और क्या सीखेंगे? अथक, चाहे उम्र कोई बाधा नहीं है, सेवा सेवा करते जाओ, अपने आप आयु बढ़ेगी। नेक्स्ट, विशेषताओं को काम में लगा, और दुनिया वाले जो कहते हैं उस पर बिलीव नहीं करो, सब कहें तुम अयोग्य हो, तुम अयोग्य हो, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, भगवान क्या कह रहा है? तुम महान आत्मा हो, दुनिया वाले कहते हैं तुम ये हो, तुम वो हो, तुम अच्छे नहीं हो, भगवान का सुने या उनका सुने? भगवान कहता है कि तुमसे होलीएस्ट, प्योरेस्ट, हाइएस्ट कोई है ही नहीं सृष्टि में, और वो लोग कहते हैं तुम कपटी हो, तुम ये हो, तुम वो, किसका सुने? आपका सुने या भगवान का सुने? भगवान का सुने, और क्या सीखेंगे? किसी को कहना भी नहीं कि तुम बूढ़े हो, ये भी ठीक। और हमारे पास पुष्पाल दादी थी, ओपीडी में आए थे एक बार, नीचे बैठे चेयर पर, तो वो उठने लगे, हम ऐसे मदद करने लगे और बहने भी थी उठाने के लिए, ए हटो हटो, बिल्कुल नहीं, मैं खुद उठूंगी। पुष्पाल दादी रानी बहन जी और सुधा बहन जी के लौकिक माता जी जो थे, हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा था। एकदम योगी स्थिति। हमको याद है आईसीयू बेड पर पुष्पाल दादी, मॉनिटर पे पूरा रिदम आ रहा है और हम देख रहे हैं, दृष्टि ले रहे, दादी देख रही है देख रही है देख रही है, और आंखें बंद कर दी और फिर इधर मॉनिटर देखा, स्ट्रेट लाइन। देखते देखते आत्मा चली गई। बहुत सारी बीमारियां थी वो अलग बात है, परंतु एकदम शांत। बाबा कहते हैं मेरी याद में जब योगी शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, सन्नाटा हो जाता है। हाँ एकदम सरल स्वभाव, बिल्कुल मुझे छूना नहीं, कोई हाथ नहीं लगाना, प्यूरिटी के लिए प्यार, शरीर को कोई हाथ नहीं लगा, जो करना है दूर से बोलो, जो बोलना है हाथ नहीं लगाना, बस शरीर भगवान को दिया है, देहधारी स्पर्श नहीं कर सकता। स्टोरी नंबर 7, लास्ट स्टोरी। मधुबन में राजशेखर भाई थे, अब मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, पर चले गए होंगे क्योंकि बहुत पुराने भाई। उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया कि ब्रिज कोठी में बाबा सुबह क्लास के बाद सबको घुमाने ले जाते थे और रास्ता उबड़ खाबड़ था, और जैसे ब्रिज कोठी से बाहर निकले तो सब लोग निकले और मैंने देखा एक बहुत बड़ा अजगर, लंबा कई गज का और मोटा मोटा अजगर, वो सब लोग निकल गए, मैं पीछे डर के मारे रुक गया। राजशेखर भाई कहते बाबा ने पीछे मुड़ के देखा और मुझे देखा कि मैं डरा हूं और कहा बच्चा क्या हो गया, आ जाओ उसको फांद के आ जाओ। इतना मोटा अजगर और लंबा काला काला, और ये तो डर गए। और बाबा कहते हैं आ जाओ बच्चे आ जाओ उसको फांद के आ जाओ, और वो अजगर खिसक खिसक के आगे बढ़ रहा था, मरा हुआ नहीं था, खिसक खिसक के अजगर आगे बढ़ रहा था। बाबा ने कहा आ जाओ बच्चे आ जाओ उसको फांद के आ जाओ, जानवर भी प्रेम के संकल्प समझते हैं। वो तो डरे थे फिर भी बाबा ने कहा, और बाकी सब लोग निकल गए आगे, वो पीछे, तो उसको कूद कर वो चले गए, और जैसे चले गए घूमते घूमते बुद्धि में, बस बुद्धि योग अजगर से ही जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूस सोच रहे अजगर के बारे में, अजगर 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 अजगर। फिर ये लोग बाहर आ गए, अंदर वापस आ गए और वापस सब चले गए, वो उनका ध्यान उसी तरफ था, अजगर कहाँ गया, तो देखा अजगर बहुत दूर जा रहा था, और फिर कमरे में चले गए सब लोग। फिर ये कमरे से निकल कर बाहर आए देखने के लिए अजगर कहाँ तक पहुंचा। तो बाबा ने कहा है, बाबा वही थे, बाबा ने बुलाया बैठो इधर। बाबा ने कहा देखो माया किस किस रूप में आती है और बुद्धि योग तोड़ देती है, माया किस किस रूप में आती है बुद्धि योग तोड़ देती है। शाम के समय चेंबर में बैठे तो भाई कहते हैं कि मम्मा ने भी मुझे बहुत शिक्षाएं दी, और मैंने बाबा से स्वीकार किया कि बाबा मेरा बुद्धि योग पूरा टूट गया था, केवल अजगर से लग गया था। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारे संकल्प जानवर तक भी पहुंचते हैं, प्रेम की भाषा वो भी समझते हैं, और निर्भय, और ये समझना ये भी माया का रूप है। जो चीज़ हमें बाबा से दूर ले जाती है वो हर चीज़ माया है, वो हर व्यक्ति हर वस्तु हर वैभव माया है। बुद्धि पर हावी ना हो जाए डर, क्योंकि बुद्धि में अभी अजगर धीरे धीरे जा रहा है, वास्तव में डर की तो बात है, अभी भी अगर यहाँ अजगर आ जाए जानवरों से तो डर तो लगता है, पर फिर भी चीता देखा, अच्छा उस समय बाबा याद था चीता देखा था, हाँ था तो पास। प्रकाश मणि दादी भी एक बार सुनाते हैं कि बाथरूम में गए और वहां पर सांप है, तो दादी ने वो कमोड का वो बंद कर दिया, उसके अंदर से निकला वो बंद कर दिया, और दादी ने अपना नहाना वगैरह पूरा किया और बाहर है, और फिर बाद में बताया अंदर सांप, कब दिखा, आधे घंटे पहले, सब लोग चिल्लाने लगे सांप सांप कहाँ है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, निश्चिंत दादी। तो 7 स्टोरी सुनाई। स्टोरी नंबर 1 याद रखनी है, साक्षात्कार की बात बताई, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना। स्टोरी नंबर 2 एंजेलिक वॉक, भाग भाग के नहीं जाना है कहीं पर, फटाफट फटाफट जल्दी करूं जल्दी करूं, धीरे धीरे बूंद बूंद मिलके बने सागर, धीरे धीरे सागर बनता है। और 3 हर काम, कोई भी काम छोटा नहीं है, जो भी सेवा मिल जाए उसको क्या समझो, बहुत बड़ा प्रभु प्रसाद है, और ये भाग्य बन, अभी जो संडे की मुरली था सेवाधारियों से क्या कहा, गोल्डन चांस है, यही सेवा नहीं भाग्य को बढ़ाओ, तो ये नहीं समझो ये मुझे इतनी छोटी सेवा दी गई, ये मत समझो जो भाषण दे रहे हो ज्यादा सेवा कर रहे, हो सकता है अहंकारी है वो, एक भाषण देते और पुण्य खत्म। नेक्स्ट स्टोरी, सच्चे बच्चे पसंद है। क्या सच्चाई स्टोरी में क्या थी? हाँ, जो जिसने 2 साल से झूठ नहीं बोला वो आके टोली बांटेगा। नेक्स्ट परक शक्ति, स्टोरी क्या थी? टॉवेल दे दिया, तो जिसको जो आवश्यकता है वो समय पर देना, समय पर, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक भाई अनुभव सुना रहे थे, शांतिवन में थे और थोड़े से बीमार हो गए, एवरहेल्थी में एडमिट हुए। एक भाई को कहा मुझे थोड़ी खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी देने भाई गया, शाम तक आया ही नहीं, भूल गया। ये इंतजार कर रहे, खिचड़ी आएगी आएगी आएगी, आई नहीं। नेक्स्ट, बूढ़ा नहीं समझने अपने आप को, और जो जवान है वो भी अपने आप को बूढ़ा ना समझे, नहीं तो आजकल जवान लोग भी बूढ़े वाले कंप्लेंट लेके आते हैं, क्या हो रहा है कमर दर्द, क्या हो रहा है थकान रहती है, अरे इतना जवान आदमी है थकान रहती है, थोड़े ताकत वाले वो इंजेक्शन देते, वो लास्ट टाइम दिए थे ना आशीष भाई, वो लास्ट टाइम वाले जो दिए थे ना 5 इंजेक्शन, उससे बहुत ताकत आ गई थी। ताकत इंजेक्शन से नहीं संकल्प से आती है। स्टोरी नंबर हो गया क्या अजगर को? तो सभी मित्र है, सभी हमारे कौन है? मित्र। बाबा की कितने बच्चे थे? 7 बच्चा था बाबा का, खांसी बच्ची थी बाबा की, चिड़िया बच्ची थी बाबा की, और खांसी बीमारी और टेप रिकॉर्डर बच्चा था बाबा का, और माया बच्ची थी, और विदेशी बाबा के बच्चे थे जो आए नहीं थे अभी तक, और माया भी बच्ची है। कितने बच्चे हैं बाबा के? ब्राह्मणों को छोड़कर भी बाबा के दूसरे बच्चे। तो तुमने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक एक नए मन का उजाला, तुम ही ने हमें सिखाया प्यार की सेवा, जब भी हम कहीं गिरने लगे तुमने संभाला, ओ सर्वधर्म समन्वय समन्वय समन्वय, बूंद बूंद मिल के बने लहर और लहर लहर मिल के बने सागर, ओ बने सागर दूर पास तेरी दया, मिलती निरंतर भरते रहे अपने मन की गागर, ओ मन की गागर। ओम शांति।
घर तुमने बनाया, लाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन, ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो 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 हो, बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, ओ बने सागर, ओ बने सागर, दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, ओ मन की गागर। जहाँ हमको लगे छाँव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए, प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए, ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो 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 हो, बूंद बूंद मिलके बने सागर, हो बने सागर।